ओम शांति, ओम शांति। मुंबई कुलाबा नगरी से आप सभी पधारे हैं और मैं कहूंगी कि मुंबई हमारा होम टाउन है, हमारा जन्मभूमि, कर्म भूमि, सेवा भूमि शुरू की वो मुंबई ही है और खास कुलाबा ही है। जैसे गायत्री बहन ने बताया, मेरा लौकिक घर कुलाबा में ही था और हम रोज क्लास में आते थे और कोर्स कराना, म्यूजियम समझाना, क्लास लेक्चर देना, ये मेरा नित्य कार्य था। और 1966 में कुलाबा का सेंटर खुला। हाँ, जय हिंद कॉलेज से मैंने बीएससी की 69 में कंप्लीट की और स्कूल मेरा हिलग्रेंज हाई स्कूल जो पेडर रोड पर है, तो कुलाबा में रहती थी और स्कूल कॉलेज वही था। तो पहले 66 से पहले तो गाम देवी जाया करते थे, तब कुलाबा में सेंटर नहीं था और 66 में सेंटर खुला कुलाबा में। और 66 में अंजलि में आई, उसके पहले गीतांजलि, हाँ वाटरलू मेंशन में तो था ही, लेकिन कुलाबा में 66 में आए। तो तब से कुलाबा में जाते रहे, कॉलेज जाती थी और कैसे कॉलेज से वापस आती थी तो सेंटर पर सेवा करती थी। मानो कॉलेज और सेंटर, ये यही मेरी दिनचर्या थी। और कैसे बाबा ने हमें समर्पित कराया, बाबा अव्यक्त हुए 69 में और उसके बाद मैंने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तो 69 से लगातार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं और 76 से यहाँ हेडक्वार्टर्स में रहते हैं। और हर साल कुलाबा के भाई बहने तो आते ही हैं, नहीं तो हर साल पांडव भवन में आते थे। इस साल हमारी गायत्री बहन ने सोचा कि हम ज्ञान सरोवर में प्रोग्राम रखें, तो खास हम पांडव भवन से ज्ञान सरोवर में आए हैं आप सबसे मिलने के लिए। वहाँ पर भी प्रोग्राम चल रहा है पांडव भवन में, और ज्ञान सरोवर में भी चल रहा है, नीचे शांतिवन में भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, चारों तरफ बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आप सब बड़े सौभाग्यशाली हो जो ऊपर माउंट आबू में रहने का मौका मिला। मुंबई में तो बहुत गर्मी होगी, गर्मी है ना, हाँ कि मौसम अच्छा है। वैसे बहुत गर्मी तो पड़ती नहीं है, बारिश अभी नहीं है, बारिश है अभी है थोड़ी सी, लेकिन इस समय सितंबर का महीना माउंट आबू में बहुत सुंदर बाहरी मौसम होता है। बारिश भी ख़त्म हो गई और गर्मी भी नहीं है, तो सबको अच्छा लग रहा है ना, यहाँ सबको अच्छा लग रहा है। हाँ, और ज्ञान सरोवर में तो हमारे बहुत ही टैलेंटेड भाई बहने हैं, बहुत कुछ यहाँ अच्छी अच्छी बातें आपको सुनाते होंगे। सवेरे से लेकर रात्रि तक आपका कार्यक्रम तो फिक्स है ही, अमृत वेले 4 बजे से उठना और रात्रि तक प्रोग्राम चलना। कल भी हमने YouTube पर देखा आपका कल्चरल प्रोग्राम, नीचे था, पर आज यहाँ है, आज यहाँ है। तो इसका आज के कल्चरल प्रोग्राम में कौन होंगे भागीदार, किसके किसका है आइटम्स, यहाँ पर बैठे या रिहर्सल कर रहे हैं? और वो बहन कहाँ है जो मोनिका भी है? अच्छा अच्छा मोनिका का ही ग्रुप है। तो हर साल तो कुलाबा ये माउंट आबू में अपना मधुबन में पांडव भवन में करते हैं, तो ये स्टेज तो और ही बड़ी है, या तो और अच्छी तरह से आप कल्चरल कर सकेंगे। तो हर ग्रुप में कोई ना कोई टैलेंटेड भाई बहने तो होते ही हैं, और भगवान ने तो हमें हर प्रकार के गुण भी दिए हैं। हम तो यही कहते हैं ये संसार एक ड्रामा है। शेक्सपियर ने भी क्या कहा, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स प्लेइंग आवर रिस्पेक्टिव रोल्स। तो हर एक आत्मा को अपना अपना रोल बजाना है। हम किसी से न नफरत कर सकते हैं, न किसी से ईर्ष्या कर सकते हैं, न किसी से कंपैरिजन कर सकते हैं। ईच वन इज यूनिक, हम यही कहते हैं। तो जबकि हर एक यूनिक है, हर एक स्पेशल है, हर एक महान है, तो किसे भेंट कैसे कर सकते हैं? बाकी ये ज़रूर है कि हर एक का कार्य अपना अपना है, इसीलिए और उस कार्य में वो आगे बढ़ते जाते हैं जितनी उनकी कैपेसिटी, जितनी उनकी हिम्मत, जितना उनका जिस जो कार्य क्षेत्र है उसी अनुसार वो कार्यरत हैं। आप भी सब विभिन्न व्यवसायों से आए होंगे, लेकिन चार दिन के लिए, चार पांच दिन के लिए अपने उस व्यस्त आप कारोबार से समय निकाल करके यहाँ पहुँचे। तो माउंट आबू पहली बार आए होंगे, जो पहली बार आए हैं हाथ उठाए। अच्छा, इतने सारे पहली बार आए हैं जी। अच्छा, नायर हॉस्पिटल की नर्सेज है, नायर हॉस्पिटल की नर्सेज है, वेरी गुड। नायर हॉस्पिटल, हम पिछली बार आए थे मुंबई तो जेजे हॉस्पिटल में गए थे। हम कहते हमारा जन्म ही जेजे हॉस्पिटल में हुआ था, हमारा लौकिक जन्म जेजे हॉस्पिटल में हुआ था, और उसी हॉस्पिटल में हमको लेक्चर देने का मौका मिला था, वहाँ की सब नर्सेज मिली थी। हमारा जन्म तो 1948 में हुआ था, तो अभी 75 इयर्स हमने मनाए, तो वो तो उसी समय। लेकिन वहाँ जा कर के हमें खुशी हुई कि हमारा शरीर का जन्म यहाँ ही जे हॉस्पिटल में हुआ था। तो नायर हॉस्पिटल भी इतना दूर नहीं है, पास में। हाँ जी 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 जी, वेरी गुड। तो आप सब इतनी लगन वाली आत्माएं हैं और आध्यात्मिकता में आपकी बहुत रुचि है, तभी तो आप इतना समय निकाल करके यहाँ आए हैं। वरना मुंबई जैसी मायावी नगरी हम कहते हैं, सब भाग दौड़, हाँ टेंशन, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, इतनी ट्रैफिक, और यहाँ तो आपको बिल्कुल ठंडी हवाएं मिली होगी, है ना? मिली है कि नहीं? हाँ मिली, ठंडी हवाएं सुबह को ज़रूर मिली होगी। वहाँ इतना पोल्यूशन, सब प्रकार का पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन भी होगा, न जाने कितने प्रकार के पोल्यूशन हैं। हाँ माया नगरी है पूरी, और यहाँ नो पोल्यूशन। हर पोल्यूशन का मूल कारण है माइंड पोल्यूशन, मेंटल पोल्यूशन, और मेंटल पोल्यूशन भी वहाँ पर चरम पर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेराफेरी, बेईमानी, छल, कपट, निंदा, चुगली, क्या कहेंगे, हाँ एक लिस्ट है, क्या क्या, झूठ को सच करना, सच को झूठ कर बनाना, न जाने क्या क्या कार्य चलते रहते हैं उस मायावी नगरी में। तो ऐसे कई बार लगता है कि बुद्धि मलिन हो गई, और यहाँ आकर के इतनी स्वच्छ हवा में आते हैं और सबका हर्षित चेहरा देखते हैं, शुद्ध भोजन जी, स्वर्ग, हाँ जी जी बिल्कुल, स्वर्ग में आए हैं। तो जैसे स्वर्ग में कोई शोक नहीं, कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, हाँ सब खुशी खुशियाँ मनाते हैं, ऐसे ही आप भी यहाँ मनाने आए हैं। सुबह से रात्रि कैसे हो जाती है पता चलता है? आज कौन सी तारीख है ये पता चला? आज कौन सा दिन है? हाँ कहेंगे संडे का दिन है, पर वहाँ तो संडे माना छुट्टी, सो जाओ, सो जाओ। और यहाँ हमारे लिए कहते, हम लोग कहते हैं नो हॉलीडे, एवरी डे इज अ होली डे, देयरफॉर नो हॉलीडे। अब कहते हैं कि यहाँ आप हर दिन होली डे मनाओ, होली मना एकदम वो शुद्धि का दिन। तो सतयुग दुनिया में आप हमेशा हॉलीडे ही मनाएंगे, क्योंकि खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, त्योहार होते हैं तो खुशियाँ मनाते हैं ना। भारत में तो हर रोज़ कोई ना कोई त्योहार है। अभी आ रहा है आपका गणपति, गणपति आ रहा है 19 तारीख को गणपति जी। पहले गोविंद आए, पहले गोविंद आए, हाँ वहाँ भी हंडी फोड़ते हैं, जहाँ जाओ वहाँ गोविंदा आला रे हाँ। और सब उत्सुकता से देखते हैं। और फिर क्या बोलेंगे, गणपति बापा मोरिया पुरचा वर्षी लो करिया, तो बहुत अच्छा जी। आज कौन सा? हाँ 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 जी जी जी। तो देखो वैसे तो, परंतु हम लोग क्या कहते हैं, वो जो खुशियाँ हैं वो एक दिन की होती है। नया साल आता है, एक दिन आया, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर करेंगे, लेकिन वो कितना हैप्पी होता है, अगले दिन जाओ तो फिर अनहैप्पी अनहैप्पी अनहैप्पी। और यहाँ तो परमात्मा हमें कहते हैं कि हर दिन हैप्पी डे है, हर दिन होली डे है, हर दिन हैप्पी डे है, हर दिन पीस डे है, क्योंकि हमारा जीवन ही इतना पीसफुल बन जाता है। अभी हमारे चंद्रयान को चंद्रमा पर लैंड हुआ, तो हम आज वो जो इनका जो इसरो का जो चेयरमैन है, तो उनका हम स्पीच सुन रहे थे। तो वो यही कह रहे थे कि चाहे हम चंद्रयान में से चंद्रमा पर पहुँचे, अभी वो लूनर क्या L1 वो सन तक जाएंगे, ऐसा भी उनका प्लान है। वो चालू तो हो ही गया है, लेकिन वो सब तो किया, इस आउटर स्पेस में तो हम गए, वो तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन इस आउटर स्पेस से भी ऊपर कुछ है, वो ऊपर कुछ है उसको तो हम जानते ही नहीं हैं, और अंदर कुछ है वो भी नहीं जानते हैं। तो हम तो बस बाह्य दुनिया में ही रहते हैं। इसलिए यही कहा है ना कि विज्ञान तो बहुत सुख देता है, अच्छी बात है, लेकिन जब तक उस विज्ञान में अध्यात्म न हो तो वो विज्ञान फिर अंत में विनाशकारी बन सकता है। परंतु विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म भी जरूरी है, साइंस के साथ साथ साइलेंस पावर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि साइंस की शक्ति का आधार ही साइलेंस पावर है। इसलिए मेडिटेशन को इतना महत्व दिया जाता है, आध्यात्मिकता को महत्व दिया जाता है। तो आध्यात्मिकता माना क्या? आध्यात्म अर्थात आत्मा का अध्ययन। शरीर तो विनाशी है, लेकिन मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, वो पहचानना, इस देह से न्यारा समझना, इस देह के अंदर मैं एक चेतन शक्ति विराजमान हूँ ये निश्चय करना, और इस कर्म क्षेत्र पर मैं पाठ बजा रही हूँ, मेरा असली स्वभाव शांति है, प्रेम है, खुशी है, और इसलिए हम इस संसार में आए ताकि हम ये बांट सके सबको। तो देना है, देना है, ये खजाने बांटने हैं, हम देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं, क्योंकि आत्मा इन खजानों से भरपूर है जो हम मन द्वारा, वचन द्वारा, कर्म द्वारा व्यक्त करते हैं। आज आत्माएं इनसे क्यों वंचित है? क्योंकि अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जानती है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया इस जगत में, आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है और कैसे उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, उसके लिए करना क्या है। तो एक है अंदर का जगत, दूसरा है बाहर का जगत और तीसरा है इनसे भी पार, हाँ, जिसको परमात्मा के लिए कहा, पार निर्वाण कहा, हाँ, परम धाम कहा। तो ये तीन लोकों में जो सबसे ऊंचा लोक है, लोक, अलोक और परलोक, उस परलोक तक पहुंचना ये हमें मेडिटेशन सिखाता है। और जब हम उस लोक का अनुभव करने लगते हैं तो महसूस होता है कि हम यहाँ पर होते हुए भी एक न्यारा प्यारा जीवन जी सकते हैं। आज क्यों मनुष्य इतना तनाव में है? क्योंकि लगाव है, अटैचमेंट्स है, मेरापन है, मेरा मेरा मेरा, मैं मेरा, उस मैं मेरे में फंसे हुए। तो जहाँ मैं मेरापन है वहाँ तो दुखी होगा, क्योंकि जितनी बार सुबह से लेकर रात्रि तक मैं कहते रहते हैं, वो देह अभिमान के वश में कहते हैं, तो हमारा हर कर्म पाप के खाते में जाता है। तो क्योंकि अभिमान तो दुखदायी है ना, इसीलिए कितना सुंदर कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप का मूल है अभिमान, और जहाँ पाप है वहाँ परमात्मा नहीं है। या तो परमात्मा होगा या तो पाप होगा। हम लोग कहते हैं या तो पाप है या तो बाप है, परमात्मा पिता है। तो हम उस पारलौकिक पिता को पहचाने, उस परलोक को पहुंचना है तो उस घर को याद करें, क्योंकि वहीं जाना है। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या कहता है? खुद को पहचानो, परमात्मा को पहचानो और फिर समय को पहचानो। अभी कौन सा समय चल रहा है? घोर कलयुग चल रहा है, चारों ओर पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार, सब प्रकार का बुरा आचरण चारों ओर देखने को मिल रहा है। लेकिन सदाचार ये कहीं कहीं मुश्किल से मिलता है। आज भी हम सुबह बाबा के माँ वाक्य सुन रहे थे, तो बाबा ने कहा कि हर एक के जीवन में कितने प्रकार के पर है, पर, हाँ, पंख होते ना, तो उसको पर कहते हैं। तो कौन से पर है? पर दर्शन है, पर निंदा है, पर ग्लानी है, पर चिंता है, पर मत है। तो ये अलग प्रकार के पर है, इन परों के पीछे हम दौड़ते रहते, उड़ते रहते, इसकी उसकी 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 बातें, और उसी में फंसे रहते हैं, तेरी मेरी इसी में फंसे रहते हैं। तो परमात्मा ने कहा ये सारे पर अभी निकाल दो, ये पर जो है वो आपको कभी भी परम धाम की सैर नहीं कराएंगे, लेकिन ये पर हटा करके एक पर जोड़ो, एक पंख जोड़ो, और वो पर कौन सा है? परोपकार। परोपकार ये पंख जोड़ो, और वो पंख कैसे जुड़ेगा? जब हम मैं मेरे से दूर रहेंगे। तो मेरापन कहाँ आता है? जहाँ लोभ होता है, मोह होता है। और मैंपन कहाँ आता है? जहाँ अभिमान होता है। तो ये सारे ही विकार एक दो के साथी है। एक देह अभिमान आया तो काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा, ईर्ष्या द्वेष ये सब आएंगे। लेकिन इनसे अगर मुक्त होना है तो खुद को पहचानो, क्योंकि यही दुखों का कारण है। दुख तो कोई नहीं चाहता अपने जीवन में। किसी से भी पूछो आपको क्या चाहिए जीवन में, धन बहुत है, मकान बहुत है, गाड़ियां बहुत है, महल है रहने के, कोई कमी नहीं है। फिर उनसे पूछ तो अगर आपके जीवन में कोई कमी नहीं है फिर आखिर क्या चाहिए, तो कहेंगे बस हमको सुख शांति चाहिए, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए, सुख चाहिए, खुशी चाहिए, क्योंकि वो इसमें नहीं है। चाहे कोई कितना भी कहे कि संपत्ति में सुख है, लेकिन अगर संपत्ति में लोभ पड़ गया तो वो संपत्ति भी कहाँ सुख देगी, हमेशा यही होड़ रहेगी और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो जहाँ और चाहिए, तो चाहे कितना भी धनवान व्यक्ति हो परंतु अगर वो लोभी है तो लोभी नर तो कंगाल है, लोभी नर कंगाल है, कितना भी उसको मिलेगा उसको कभी तृप्ति नहीं होगी। नहीं तो पेट को क्या चाहिए, दो रोटी और क्या चाहिए, हाँ एक पाव सब्जी रोटी दाल बस और क्या चाहिए, चलो तीन टाइम भोजन करे कुछ भी करे, लेकिन कितना चाहिए। तो परंतु आज मनुष्य पेट के लिए नहीं कमाता है पर पेटियों के लिए कमाता है, हाँ पेटियों के लिए, पेटियां तो जितनी भर लो आप मालिक हो, पेट तो एक ही है, वो तो ज्यादा नहीं लेता। अगर ज्यादा भरेंगे पेट में तो या तो डायरिया हो जाएगा या तो उल्टियां आएगी, हाँ पेट तो हजम नहीं कर सकेगा। तो कोई कहते हैं ना बहन जी ये पेट ही पाप कराता है, वास्तव में पेट पाप कभी नहीं कराता है, क्योंकि पेट को तो दो रोटी चाहिए बस। लेकिन लोभ ये मनुष्य को दुखी कर देता है, इसीलिए चाहिए चाहिए चाहिए। हम तो कहते अगर चाहिए तो बस एक भगवान चाहिए और कुछ नहीं, और अगर भगवान मिल जाए तो फिर सब कुछ प्रकृति आपकी दासी बन जाएगी। हाँ जैसे सूर्य के आगे आप जाएंगे तो जो परछाई है वो आपके पीछे होगी, पर आप परछाई की ओर जाएंगे तो सूरज पीछे होगा, तो धीरे धीरे परछाई आपकी लंबी होती जाएगी क्योंकि सूरज पीछे है, और वो जितनी लंबी परछाई होती जाएगी धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा। पर आप परछाई को पीठ दो और केवल रोशनी की तरफ जाओ तो वो रोशनी तरफ जाने से परछाई आपकी छोटी छोटी होती जाएगी, और जैसे छोटी होती गई होती गई होती गई आप रोशनी के पास आएंगे तो परछाई आप में समा जाएगी, परछाई खत्म, क्योंकि आप रोशनी के अंदर है, और जितना रोशनी से दूर उतना अंधेरे की ओर जाएंगे। तो परमात्मा है प्रकाश स्वरूप और अंधियारा है ये माया, ये रावण, ये पांच विकार जो दुख देते हैं। तो अंधेरा किसको पसंद है, किसी को पसंद नहीं, क्योंकि अंधेरे में तो विकार ही भरे होते हैं। मनुष्य चोरी भी करेंगे तो अंधेरे में करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, पापाचार करेंगे, काम वासना में फंसेंगे तो भी अंधेरे में। तो सारे पाप के जो काम होते हैं वो अंधेरे में होते हैं, और सचमुच बेहद रूप में देखे द्वापर और कलयुग ये तो अंधियारा मार्ग है, जिसमें इतने पाप हुए जो अभी सिर पर बहुत पापों का बोझा चढ़ गया है। अब इस सिर पर जो पापों का बोझा है उसको उतारना है, कैसे उतरेगा, कैसे उतरेगा ये पापों का बोझा। गीता में साफ लिखा है हे अर्जुन तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, सब दे अदे के धर्मों को त्यागो मेरी शरण में आओ। तो जहां मैं और मेरा है वो तो पाप ही कराएंगे, और इस समय सबके सिर पर पाप का घड़ा भर चुका है, लेकिन ये पाप का घड़ा जितना भरता जाएगा उतना सजाएं हम अपनी कंफर्म करते जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल तो मिलेगा ही। इसीलिए ये ज्ञान भगवान हमें देते हैं, तो समय का ज्ञान है, फिर कर्म का ज्ञान है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, हाँ ये जरूरी है समझना। क्योंकि अगर पाप कर्म करते जाएंगे वो सिर पर जो पाप का बोझा चढ़ेगा उसको चुकतू करना है। ईश्वर के घर जाएंगे तो वहाँ ये पाप का घड़ा लेकर नहीं जा सकेंगे, वो पाप का घड़ा यहीं खत्म करना है। और भविष्य के लिए बहुत कमाई करनी है, ये पाप का घड़ा माना हमारे ऊपर कर्जा, जैसे किसी के सिर पर बहुत कर्जा हो तो उसको नींद कहाँ आएगी। आज देखो नींद के लिए गोलियां खानी पड़ती है, नींद के लिए क्या नहीं प्रयत्न करते हैं। और एक बेचारा छोटा सा साधारण व्यक्ति वो जहाँ भी बैठेगा उसको नींद आएगी, और कोई तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, डनलो पिलो के उनके गद्दे हैं, सारा सोना चांदी न जाने क्या क्या है, लेकिन नींद नहीं आती है। वो सोना किस काम का, हाँ जो हमारा ये सोना निकाल को दूर कर दे, कौन सा सोना प्रिय है, वो नींद का सोना या वो सोना जो कहते हैं कि सोना क्या पहना, हाँ वो सोना किस काम का जो कान काटे, इतना मोटा मोटा पहनते ना तो कान ही कट जाता है। वो हीरा किस काम का जो उंगली काटे, हाँ कहीं अपना हीरा दिखाते अपनी उंगली का तो एक दिन उसकी उंगली कोई काट लेता है। हाँ वो चेन किस काम का जो हाँ बंधन में डाल दे या वही ले ले, बार बार उसको ध्यान रखना पड़ता है। मुझे याद है मुंबई में हम जब ट्रेन से ट्रैवल करते थे तो देखते थे एक बहन चिल्लाएगी, हाय मेरा मंगलसूत्र कोई ले गया, मंगलसूत्र कोई ले गया, हाँ मेरा मंगलसूत्र किसी ने छीन लिया, इतना चिल्लाए इतना रोने लगे, तो दूसरी माताएं अपना देखती है, मेरा तो ठीक है ना, हाँ मेरा तो मंगलसूत्र ठीक है ना, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। हाँ कोई कहेगा मेरा पॉकेट किसी ने उठा लिया, पॉकेट किसने उठा लिया, तो वो पिक पॉकेट है उठाएंगे कुछ भी पता नहीं चलता, थैला उठा लिया क्या क्या उठाएंगे, तो दूसरे देखेंगे मेरा तो ठीक है ना, बाकी दूसरे का गया तो क्या फर्क पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बहुत हम ये देखते हैं, ये तेरे मेरे में इतना फंसे रहते हैं। लेकिन भगवान हमें क्या कहते हैं, न कुछ तेरा न कुछ मेरा, ये सब परमात्मा का है, ईश्वर का है। आरती में तो यही कहते हैं ना, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जब तेरा ही है और तेरा ही तुझको अर्पण है, मेरा कुछ नहीं, तो मेरा मेरा फिर कहाँ से आया। लेकिन मनुष्य अज्ञानवश समझता ये मेरा है। हाँ कई कहते मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन सारा दिन मैं करते रहते, ये कितना बड़ा झूठ है। मैं वास्तव में आत्मा हूँ और खुद को देह समझ बैठे हैं, तो ये झूठ हुआ ना। फिर कोई कहे मैं कभी चोरी नहीं करता हूँ, कभी किसी की चीज़ नहीं उठाई मैंने, लेकिन जो मेरी भी चीज़ है उसमें भी मोह रख के बैठा तो वो भी तो चोरी हो गई, क्योंकि जब मैं संसार में आया तो कुछ लेके तो आया नहीं। और जब आत्मा उड़ के पंछी उड़ जाएगा वतन, हाँ उड़ पंछी बन के ना, आत्म पंछी है वो, उड़ गया शरीर से तो कुछ भी नहीं ले जाएगा, तो मेरा कहाँ से आया। तो जितनी बार मैं मेरा इसमें हम कहते रहते हैं जीवन में, उतनी बार हमारा पाप बढ़ता जाता है। और परमात्मा के लिए ही कहते ना, ईश्वर के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है। तो ईश्वर के घर में देर भले है, जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा, भले देर है लेकिन अंधेर तो नहीं है ना। इसीलिए देर भई दुरस्त, उतना अंधेर जितना हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते जाते हैं, हमारे सिर से पापों का बोझा हटता जाता है और हम एक दिन एक सुखमय संसार इस समाज में देखेंगे। इसीलिए शिव बाबा ने ये नारा दिया है। क्या नारा दिया है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अब दुनिया को बदलना है, समय ज़्यादा नहीं है। देख रहे हैं कैसे तैयारियां हो रही है विनाश की। अभी क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है बात मत पूछो। मैं 8 दिन पहले यूरोप के टूर से आई हूँ, यूरोप के टूर से 8 दिन पहले ही लौटी हूँ मैं। तो वहाँ पर इतनी गर्मी कि सारे गर्मी के रिकॉर्ड तोड़ गए। जर्मनी में भी गर्मी, जहाँ कभी नहीं पड़ती गर्मी, कोई पंखे ही नहीं रखते हैं, खिड़कियाँ भी इतनी मोटी मोटी शीशे है ही नहीं, और ये हीटिंग है लेकिन एसी कुछ नहीं, पंखे नहीं। वहाँ भी लोग कहे सो हॉट। आप सोचो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और गर्मी अभी और बढ़ेगी, 50 डिग्रीज तक जाएगा ऐसे अनुमान है। तो आप सोचो क्या होगा, सब पिघलता जाएगा। वहाँ बता रहे थे हम दोहा में उतरे, हमारी फ्लाइट तो वहाँ पर ट्रांजिट था, तो कहा कि इतनी गर्मी बाहर पड़ रही है जो गाड़ी के टायर्स मेल्ट हो रहे हैं, गाड़ी के टायर मेल्ट हो रहे हैं। कितना एसी चला के कितना एसी चलाएंगे, सारा दिन 24 घंटा एसी, तो बीमार भी हो जाते हैं। हर चीज़ एसी। और यहाँ देखो भारत में कितना सुनहरा मौसम है, भले गर्मी पड़ती होगी लेकिन इतनी तो नहीं जितनी वहाँ 54 डिग्रीज तक बोला जाएगा, क्या क्या होगा। तो इसलिए भी भगवान हमें कहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन करो, इस मैं मेरा को छोड़ो। अगर मैं हूँ तो आत्मा हूँ, मेरा है तो बस परमात्मा है, और श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करते जाओ क्योंकि वही काम आएगी, बाकी तो कुछ भी काम नहीं आएगा। ठीक है? हाँ, इसीलिए आपसे मिलने के लिए हम आए और हमारी गायत्री बहन की इच्छा पूरी की। आप सबसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। माउंट आबू भी घूमेंगे ना, घूमने का दिन कब है? कल है। तो पांडव भवन भी आप आएंगे, पांडव भवन में भी आप ब्रह्मा बाबा के यादगार स्थान देखेंगे, जिसको हम कहते हैं चार धाम। ब्रह्मा बाबा का कमरा जहाँ बाबा रहते थे, तपस्या करते थे, और झोपड़ी बाबा की जहाँ बाबा पत्र लिखते थे, हिस्ट्री हॉल जहाँ बाबा वाणी चलाते थे, और शांति स्तंभ जहाँ पर बाबा का की समाधि है वो आप देखेंगे, और पांडव भवन का तो माहौल ही दूसरा है। ये हमारी एकेडमी है और बाकी पांडव भवन रेजिडेंस है। तो इस एकेडमी में आए हो, यहाँ पर आप खूब अच्छी तरह स्टडी करना, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ना, इस लक्ष्य को अपने जीवन में लाना कि हमको मनुष्य से देवता बनना है, नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो देखो धीरे धीरे कैसे एक एक के परिवर्तन से इस विश्व का परिवर्तन होगा और ये कलयुगी दुनिया खत्म होकर वो सतयुगी पावन दुनिया अवश्य आएगी, जहाँ सुख शांति की बांसुरी बजेगी सब जगह। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।